Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan Shvetashvatara Upanishad ke Pratham Adhyay ka Swadhyay kar rahe hain. चतुर्थ मंत्र जो कि ब्रह्म चक्र के रूप में वर्णन है, सर्वात्मा सर्वरूप से विद्यमान जो परब्रह्म परमात्मा, उसी को ब्रह्म चक्र के द्वारा दिखला रहे हैं। सर्वप्रथम चौथा मंत्र का उच्चारण करते हैं। तमेकनेमीं त्रिवृतं षोडशान्तम् सतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमीं त्रिवृतं षोडशान्तम् शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् हम लोगों ने तम एकनेमिम त्रिवृतम षोडशान्तम् सतार धारम ये जो पचास अरे हैं, उस अरों से हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने 28 जो है अशक्ति से परिचय प्राप्त किया और तुष्टि 9 प्रकार। 28 जो अरे हैं ये अशक्ति है। उस 28 अशक्ति क्या क्या है? एकादश इंद्रिय, 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की सिद्धि। एकादश इंद्रिय 11 इंद्रियों की जो अशक्ति है, असमर्थता है, मुकत्व बधिरत्व अंधत्व आदि, यह भी एक प्रकार की आशक्ति है। पूर्ण रूप से 28, अब 9 तुष्टि का भी कुछ हम लोगों ने जाना। 9 तुष्टि में क्या क्या है? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। तो इस भाग्य तक हम लोगों ने पहुंचा। तुष्टि शब्द के द्वारा ही, शब्द से ही हम अर्थ का निश्चय कर सकते हैं। संतुष्टि, ये संतुष्टि भी एक प्रकार के अशक्ति है, ठीक है ना? कई बार किस पर आप संतुष्ट हो रहे हैं वो देखना है। अधिकतर समय जिसमें संतोष नहीं होना चाहिए उसमें हम संतोष होते हैं, और जिसमें संतोष करना चाहिए उसमें हम लगे रहते कि इसमें तो बिल्कुल हाहाकार बना रहता है। वो यहां दिखा रहे हैं कि भाई तुष्टि 9 प्रकार के हैं, उसमें एक तो है प्रकृति, प्रकृति प्रकार, प्रकृति तुष्टि यह है कि प्रकृति के ज्ञान से अनेक लोग जो है बड़ा तुष्ट होकर के बैठते हैं। कब बारिश होगी, कब भूकंप आएगा, यही तो 31 मई को ना सब जाने वाले थे हम लोग बड़ा संत इतना वो ये हुआ, कहीं कहीं तो सब रात को जो है बैठ गए। तो क्या हुआ, इसके ज्ञान से क्या मिला? अगर वो सत्य भी हो जाए मान लीजिए, तो इसीलिए ऐसे भी संसार में लोग हैं जो प्रकृति के ज्ञान से बड़ा संतुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं। तो ये भी एक प्रकार के अशक्ति है। द्वितीय यहां कह रहे हैं किसको, हाँ रिमो एकमात्र तम एक अनेमिम, उस परमात्मा के ज्ञान के बिना बाकी जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसमें अगर आप संतुष्ट है तो ये सब के सम लिमिटेड ज्ञान है, सीमित ज्ञान है। और इस सीमित ज्ञान के द्वारा आप पूर्ण नहीं हो सकते, यही दिखाना चाह रहे बारंबार। इसीलिए तो उपनिषद के उस वचन को ध्यान में रखना चाहिए, सर्वा विद्या ब्रह्म विद्याम प्रतिष्ठाम। ये जो ब्रह्म विद्या में सब कुछ प्रतिष्ठित है, कैसे, जज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। वो कौन विद्या है, कौन है वो ज्ञान, वो है आत्मविद्या। ये जो उस शक्ति के अनुभव अनुभूति जब तक नहीं होगा बाकी, इसीलिए ये सब जो दिखा रहे बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा मन जो है इस जागतिक की विद्या अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तुष्टि है मतलब सिद्धियां, इसमें हम अधिकतर लगे रहते हैं। इसीलिए लौकिक विद्या अथवा अलौकिक कोई भी विद्या जो है सिद्धि के लिए आत्मबोध के लिए, तो उससे आप पूर्ण हुए कि उससे मतलब आप सफिशियंट आपने माना कि नहीं कि मैं बहुत मिला बहुत पाया ऐसा हुआ आपको शांति मिली, तो वो मूल है ना। किस लिए, इसलिए इसी यही तो त्रुटि जो है, इसकी जो न्यूनता है सीमाएं है वो दिखा रहे। ज्ञान ठीक है, नेचर के बारे में आपने जाना, पर तो नेचर को क्रिएट करने वाला कौन है, उस तक तो पहुंचो। तो हम तो नेचर को प्रकृति को जान लिया और बस एक कब इधर से कब बारिश होने वाला है, कब अर्थक्वेक आने वाला है, इतना जान करके बोल करके बड़ा अपने को संतुष्ट होकर के बैठते कि हमने बहुत कुछ जाना, परंतु तो वही दिखा रहे कि इतने मात्र से जो है तुष्टि नहीं हो सकती, पूर्णता नहीं है। ये जो भी ज्ञान है भौतिक सुख शायद आपको मिल सकता है, निरति सुख का कोई ये साधन है। द्वितीय बताया उपादान, उपादान को कई बार हम ग्रहण कर लेते हैं, और उपादान मतलब चिन्ह बोल सकते हैं। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कई उपादान हो सकते हैं, तो उस उपादान के द्वारा उस वस्तु का निर्माण होता है। और केवल उपादान को ग्रहण कर ले, मिट्टी के द्वारा घट निर्माण है तो घटम प्रति मृत्तिका उपादान कारणम, अगर कोई मिट्टी उठा करके ही बैठ जाए कि मुझे घट मिल गया, होगा व्यवहार कर सकते हैं? तो ऐसा भी हम लोग करते हैं। तो वही हम लोग ने जो पढ़ा कि पारी ब्राज्यलिंगम गृहत्वा कृतार्थोस्मि, भाई ब्रह्म भगवान को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप को जानने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ा और संन्यास का लिंग चिन्ह भगवा वस्त्र माला कंठी तिलक सब धारण कर लिया, भस्म इधर उधर सब लगा दिए और जो है बस इतने में बड़ा संतुष्ट होकर के बैठ गए कि मैं तो, ये उपादान के ग्रहण से कह रहे नहीं होने वाला है। ये तो एक चिन्ह है, इसके बाद और कुछ करना है, मिट्टी को इकट्ठा किया, फिर चक्र चिबुर में लगाया, फिर उसको पानी दिया, फिर उसके हाथ से उसको बनाया, तब जाकर के घट बना और मिट्टी को रख के पकड़ के बैठ गया, बस सब मिल गया। ऐसा तुष्ट होने से यह भी एक प्रकार के आसक्ति है। और तृतीय है काल, काल के लिए भी बहुत सुंदर, इस काल के तुष्ट तो हम लोग सब होते हैं कि चलो जब समय होगा तब सब होगा। ये बहुत तो के मन जुबान में हमने सुना, अरे इतना भागम भाग क्यों कर रहे हो, जब समय आएगा ना तब सब होगा। और ये हाँ तो ये किस क्षेत्र में महाराज, अपने खाने के लिए तो वो समय की इंतजार नहीं होता है कि बैठे रहो जब समय आएगा तब भोजन कर लेंगे, जब समय आएगा तब ये मिल जाएगा। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान के पुकारो, भजन करो, साधना करो, उस समय हम उसको ढकेलते रहते। अरे दैनंदिन जीवन में, भोजन में, ब्याह में, विवाह में, नौकरी में, पैसा कमाने में, इसमें तो हम कभी ऐसे भाग्य के अथवा काल के लिए बैठते नहीं है कि जब काल आएगा तब पैसा मिलेगा बैठे रहो, ऐसा तो नहीं। तो काल के लिए केवल आध्यात्मिक क्षेत्र को ही क्यों ढकेलते हैं। तो इसीलिए यहां बताया कि भाई काल के लिए मुक्ति, समय होगा तो मुक्त हो जाओगे, क्यों चिंता कर रहे हो, तो समय होगा तो मुक्त हो जाओगे, तो समय होगा तो भोजन भी मिल जाएगा बैठे रहो, समय होगा तो जो अनिवार्य कार्य है वो भी हो जाएगा बैठे रहो, तो उसमें तो आप पुरुषार्थ करते हैं, समय के लिए प्रतीक्षा करते नहीं है। तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में तुष्ट होकर के बैठने से नहीं चलेगा। इसीलिए महाराज कालेन, काल के द्वारा भी तुष्ट हो सकते हैं, ऐसा भी बाधक है। और कुछ लोग होते हैं भाग्य, भाई भाग्यम फलति सर्वत्र, ऐसा निश्चय करके कि भाग्य जो है, भाग्य होगा तो परमात्मा मिल जाए ये भी है, भाग्य होगा तो परमात्मा मिलेगा, भाग्य से परमात्मा नहीं मिलते, भाग्य से परमात्मा मिलता नहीं है, कर्म से भाग्य बनता, और जो कर्म से बनता है वो नित्य नहीं है, वो परमात्मा के साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। इसलिए भाग्य के द्वारा भी परमात्मा नहीं मिलेगा, तो इसलिए भाग्य से संतुष्ट होने पर भी नहीं चलेगा। देखिए कितना बहुत सामान्य बात है, प्राथमिक है, परंतु कितने एसेंशियल नहीं लग रहे, इसी में तो हम लोग हैं। काल को लेकर के हम भी बैठे हैं कहीं ना कहीं, साधना चलो बाद में माला कर लेंगे, अभी चलो तो मेहमान आए हैं देख लेते हैं अरे मेहमान व्यवहार बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, भगवान थोड़ी बिगड़ेगा, ये है, उस समय भगवान बिगड़ते नहीं है हमारे, और कुछ काम बिगड़ जाए तो भगवान बिगड़े, ऐसा नहीं है। तो अपने अनुसार अनुकूल व्यवहार करने से नहीं होगा। इसीलिए ये सब लगता है कि क्या व्याख्यान चल रहा है, तो लेकिन साधकों के लिए बड़ा ज्ञान का है कि किस प्रकार हम अपने आप से ही वंचना करते हैं, खुद को ही जो है वंचित करते हैं ना, ये सब काल, भाग्य, प्रकृति, उपादान, ये सब देकर के आप किसको फांकी दे रहे हैं भाई। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को फांकी दे रहे, नहीं, वो खुद ही जो है धोखे में डाल रहे खुद को ही। इतना हो गया था भाग्य तक, अब आगे देखिए, भाग्य के बाद है पंच विषय का परित्याग, तुष्टि। विषयानाम अर्जनम अशक्तिम इति उपरम्य तुष्यति शक्यमते द्रष्टुमार्जितुम् अर्जितस्य रक्षणम् आसक्यम् इति उपरम्य परितुष्यति। हाँ ये देखिए तुष्टि और दिखा रहे, विषयानाम अर्जनम् अशक्तिम् इति उपरम्य तुष्यति। वह संसार को देख करके हाय हाय ऐसा लगता है, धन कमाना कितना मुश्किल है, अतः धन कमाना मुश्किल है, अशक्य है, और इससे बड़ा तुष्ट होकर के बैठ जाता है कि ये मेरे बस की बात। तो ये जो है तुष्टि जो है आशक्ति है। पुरुषार्थ के द्वारा, साधना के द्वारा ऐसा कोई भी वस्तु चीज नहीं है कि जो आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, परंतु ये जो मन में ऐसा बांध लेते हैं कि बड़ा दुर्लभ है, नहीं हो सकता है। पहले हम लोग घुटने टेकने की बड़ा आदत पड़ गया ये गलत चीज है। इसीलिए कहते हैं विषयानम अर्जनम, विषयों की अर्जन जो है उपार्जन करना असंभव है, ऐसा मान करके कुछ लोग उपरत हो जाते हैं और उससे बड़ा संतुष्ट तुष्ट होते रहते हैं। ये तुष्टि जो है, ये जो है आशक्ति है। आलस्य कह सकते हैं, आलस्य प्रमाद आदि सब है। सत्य मते, और किसी किसी के मत में ऐसा सोच करते, भाई द्रष्टुम अर्जितम अर्जितस्य रक्षणम आशक्यम। भाई अगर हमने मन ही मन विचार करते हैं कि अगर हमने धन कमा भी लिया तो फिर उसके रक्षा कौन करेगा, बड़ा झंझट है। हालांकि ऐसे आप लोग सोचते हैं क्या? लेकिन यहाँ ऐसे कुछ लोग तो है कि झंझट है, रक्षा करना है, फिर उसके लिए फिर चिंतन, तो इससे बड़ा छोड़ो। इसीलिए कह रहे परितुष्यति, ऐसा उपरम्य परित, ये भी एक प्रकार की अशक्ति है। ऐसा नहीं, देखिए ये भाव अगर वैराग्य के लिए हो तो वो पॉजिटिव हो जाए, परंतु वो क्या है, वैराग्य नहीं है, है प्रमाद है। तो वैराग्य आ जाए तो फिर आपके साधना के एक बड़ा सहयोग हो जाए, परंतु वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा व्यक्ति ना साधना करते हैं ना कुछ करते हैं तो बिल्कुल तम से ग्रसित होकर के जड़वत स्थिति को प्राप्त करते हैं। उन लोगों की बात यहां किया जा रहा है। शातिशयत्वादि दोष दर्शनेन उपरम्य परितुष्यति। सातिशय अतिशय संतोष जो है ना, विषयों के दर्शन उपार्जन संभव नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं उपरत होकर के, और कुछ विषयों की सीमाओं को देखते हैं। ऐसे लोग हैं जो धन कमाने में असमर्थ है, आलस्य प्रमाद से ग्रस्त है, वो क्या कहते हैं कि देखो धन से क्या मिलेगा, धन की सीमाओं को देख लेते उस समय जब नहीं मिलता है। ये देखिए धन की सीमाओं को देखना चाहिए, अगर वैराग्य को प्राप्त करना है तो लिमिटेशंस को देखो, ऐसे कहते। और ये जो व्यक्ति के सातिशय को जो देख रहे हैं, ये तो महाराज तम वाला है, जड़। वो ना तो साधना करने वाला है, ना वैराग्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल जड़ प्रमाद ग्रस्त होकर के ऐसा कहते हैं कि देखो धन के, धन से क्या मिलेगा, धन के द्वारा धन की न्यूनता को वो देखते हैं, धन से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, इसलिए छोड़ो उसको। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आनंदगिरी जी की जगह लिखते हैं कि इनके मन में तो बहुत तीव्र वासना है और ऊपर से प्रमाद तमगुण इतना जकड़ा हुआ है कि उस व्यक्ति को ये सब जो है, इतने ये सब संतुष्ट धन में रक्षा, धन में दोष आदि देख करके वो बैठे रहते हैं, परंतु मन में उनकी बड़ी तीव्र लालसा वासनाएं हैं। तो ये व्यक्ति बैलेंस खो देता है, वो पागल होता है, क्योंकि अंदर से उसको धक्का देते हैं प्राप्त करो, मिलेगा, चाहिए, और बाहर से वो आलस्य प्रमाद के कारण ऊपर से दबाते हैं, तो दोनों में संघर्ष होकर के उसको डिसबैलेंस कर देते हैं। ऐसे तो कई साधुओं को भी ऐसे देखा, जो तीव्र वासना वाले होते हैं ना, अगर वो साधना भी करे, जब भी करे, तो उसको स्थिर होने नहीं देते, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस को वो कर देते। इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। साधक मतलब क्या, बैलेंस को बनाए रखना। डिसहार्मोनी को हार्मोनियस करना, यही तो साधना है। और साधना के द्वारा अनकॉन्शियस लेवल में जो है उसको जान करके मन के विचार विवेक के द्वारा उसको उठा करके फेंकना है, और वो इसमें मन में जो जो भावना है उसको सप्रेस करते करते तो फिर एक दिन बम बनेगा, एटम जैसा फूटने लगेगा। इसे सप्रेस में कोई ये नहीं है, उसको विवेक के द्वारा उसको उठा करके फेंकना है, और तब जाकर के हम शांति से बैठ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। नहीं तो अनंत कामना जब होती है महाराज, ये कामना के कारण ही कहते हम लोग बैठ नहीं पाते, मन एकाग्र नहीं होते। मन में कामना है, वासना है, तो मन एकाग्र होना ही नहीं चाहेगा, होने ही नहीं देगा वो काम। और अगर विचार के द्वारा विवेक के द्वारा उस काम को आप कांटे की तरह उठा सकते हैं तो फिर, इसीलिए तो भगवान कृष्ण का प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, केवल जलाने से नहीं होगा, प्रकृष्ट रूप से जलाना पड़ेगा। जैसे पेपर को इसको जला दीजिए तो जलने के बाद अगर ऐसे रहे तो आप फिर भी कभी देखेंगे नहीं, पेपर पढ़ सकते, उसके लिपि जो है दिखती है। तो ऐसे अगर आप जलाते हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि संस्कार अभी भी दिख रहा है हमारा। ऐसा जलाना पड़ेगा कि एकदम कोरा हो जाए। और हा? तो साधना कीजिए महाराज, ये तो बोल रही है, सब वैराग्य हो तो जलेगा, जलाने की तो विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तब जाकर के वो जो है ज्ञान के लिए साधना करने में लगते हैं।